श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 16 महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। कल मैं 126 तक पाठ किया था, तो मैं 125 से आज शुरू कर रहा हूं। सगण सहिते प्रभु प्रसाद अंगी करी उठिया चलीला प्रभु बोली हरि हरि। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और हरि हरि कीर्तन करते हुए चल पड़े। रामानंद मर्तराज श्रीहरि चंदन संगे सेवा करी चले एई तीन जन। रामानंद राय, मर्तराज तथा श्री हरिचंदन सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। प्रभु संगे पुरी गोसाई स्वरूप दामोदर जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर हरिदास ठाकुर आर पंडित बक्रेश्वर गोपीनाथाचार्य आर पंडित दामोदर रामायनंदाय आर बहु भक्तगण प्रधान कहिलु सवार के करे गणन। महाप्रभु के साथ साथ परमानंद पुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, बक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रामाई, नंदाई तथा अन्य भक्त थे। इनमें से मुख्य भक्त के नाम मैंने गिनाए हैं, पूरे संख्या बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। गदाधर पंडित जबे संगेते चलिला क्षेत्र सन्नाश ना छाड़ी हो प्रभु निषेधिला। जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने के उद्यत हुए तो उसे मना कर दिया गया और कहा गया कि वो क्षेत्र सन्नाश व्रत का परित्याग ना करे। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत प्रिय पार्षद थे। गदाधर पंडित ने ब्रिक व्रत लिया था जिसे क्षेत्र सन्यास कहा जाता है। क्षेत्र सन्यास का मतलब होता है वो लोग सन्यास मतलब क्या है? सन्यास का मतलब घर छोड़ के चले जाना, सब कुछ त्याग कर निकल जाना। बल्कि ये सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो वर्णाश्रम आश्रम है, गृहस्थ बानप्रस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ, ये तीन आश्रम के पड़े हैं। मतलब सन्यास आश्रम सबसे ऊंचे हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी और बानप्रस्थ के पश्चात उसके पड़े हैं ये सन्यास। बल्कि और एक प्रकार का सन्यास आश्रम होता है जिसे क्षेत्र सन्यास कहा जाता है। क्षेत्र सन्यास का मतलब होता है उन्होंने व्रत ग्रहण करते हैं कि कोई पवित्र तीर्थ में, क्षेत्र में, भगवान के लीला स्थली में उन्होंने रहेंगे और उस स्थान छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे सन्यास गृहस्थ लोग भी ले सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे एक क्षेत्र सन्यासी से वे गृहस्थ थे, वे सन्यास नहीं लिए थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने जगन्नाथपुरी में आकर क्षेत्र सन्यास कर लेकर वहाँ ही रहे। और क्षेत्र सन्यासी व्रत लेते हैं, कभी आश्रम मतलब उस स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। बल्कि और ऐसे ही गदाधर पंडित वैसे सन्यासी नहीं थे। गदाधर पंडित ब्रह्मचारी थे, उस ढंग से, उस विचार से। ना तो उन्होंने गृहस्थ थे, ना तो बानप्रस्थी थे। बानप्रस्थ तब लेते हैं जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ आश्रम त्यागने के पश्चात उन्होंने बानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। और वैसे गदाधर पंडित क्षेत्र सन्यास लिए थे, मतलब उन्होंने जगन्नाथपुरी में आकर, ये श्री क्षेत्र है जगन्नाथपुरी का, और एक नाम है श्री क्षेत्र या भगवान का पवित्र धाम, क्योंकि जगन्नाथ वहां नित्य विराजमान है, जहां भगवान विराज करते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता, धाम कहा जाता है। वैसे इस विचार से मुख्य धाम जो है उनमें से जगन्नाथपुरी एक धाम है। तो गदाधर पंडित ने जगन्नाथपुरी में रहकर क्षेत्र संन्यास लिए थे, बल्कि जब महाप्रभु जा रहे थे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन के ओर, तो गदाधर पंडित भी उनके साथ चल पड़े। तो यहाँ महाप्रभु ने उनको निषेध कर रहे हैं, मना किया कर रहे हैं कि तुमको ये क्षेत्र संन्यास त्याग नहीं करना चाहिए, तुम ये व्रत ग्रहण किए हो, तुम वादा किए हो, तुम प्रतिज्ञा किए हो कि तुम इस स्थान में रहोगे, बल्कि तुमको इस स्थान तो इसलिए बल्कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम मेरे साथ आ रहे हो, ये उचित नहीं है। तो इसका वर्णन यहाँ इस श्लोक में हुआ है। गदाधर पंडित जबे संगते चलिला, जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए तो उसे मना कर दिया गया और कहा गया कि वो क्षेत्र सन्नास व्रत को परित्याग न करे। पंडित कहे जहा तुमि सेइ नीलाचल क्षेत्र सन्नास मोर जाऊक रसातल। जब गदाधर पंडित से लौट जाने के लिए कहा गया तो महाप्रभु से बोले, आप जहां भी रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है, आप ही के कारण जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, आप जहां हैं वही जगन्नाथपुरी है या वृंदावन है, जहां भगवान है, भगवान का धाम भी भगवान के साथ साथ ही रहते हैं, क्योंकि धाम जो है भगवान के कारण ही वो धाम है, तो जहां भगवान है वो धाम भी है, सब धाम वहां है। तो इस विचार उन्होंने बतलाया कि जहां आप हो वही वही जगन्नाथपुरी है, आप जहां रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है। और ये जो तथा कथित क्षेत्र सन्नास और रसातल, मतलब कैन गो टू हेल, माए अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो क्या इसका अनुवाद क्या होगा, लेट क्षेत्र सन्नास गो टू हेल, आई डोंट गिव ए डैम। सो प्रभु कहे इहा करो गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा तत्पाद दर्शन। जब महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथ पुरी में रुक जाने तथा गोपीनाथ की सेवा करने के लिए कहा तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों के दर्शन से गोपीनाथ की करोड़ों बार सेवा हो जाती है। आपका चरण कमल दर्शन से गोपीनाथ का करोड़ों सेवा हो जाती है। प्रभु कहे सेवा छाड़िबे आमाय लागे दोष, इहारो ही सेवा करो आमार संतोष। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम उनकी सेवा करना बंद कर दोगे तो ये मेरा दोष होगा, ये गलत मुझ पर आएगा, ये गलत फहमी मुझ पर आएगा। अतः अच्छा यदि होगा कि तुम यहां रहकर सेवा कार्य करो, इससे मुझे संतोष मिलेगा। पंडित कहे सब दोष अमार ऊपर, तोमा संगे ना जाइबो जाइबो एकेश्वर। तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, चिंता ना करे, सारे दोष मेरे मत्थे हैं, लीजिए मैं आपके साथ नहीं, अकेले अकेला जाऊंगा। मैं आपके साथ नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। आई के देखीते जाइबो ना जाइबो तोमा लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। मैं सची माता को देखने जाऊंगा किंतु तुम्हारे कारण नहीं जाऊंगा, मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। এত বলি পণ্ডিত গোসাই পৃথক চলিলা, কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাহিলা। ইস্তরহা গদাধর পণ্ডিত একেলে যাত্রা পর নিকলে, কিন্তু জব ওয়ে সভি লোক কটক পৌঁছে তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে উন্হে বুলা লিয়া অর ওয়ে মহাপ্রভু কে সাথ হো লিয়ে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু নে কটক যাকর উনকো বুলায়া। কটক পুরি সে কিতনি দূর হ্যায়, কিসকো ইয়াদ হ্যায়, কিসকো পতা হ্যায়? হ্যাঁ, 50 কিলোমিটার, 50 ভি নেই হোগা, সে লগভগ 50। আপ ওহাঁ রহতে থে? আচ্ছা, কবি কবি যাতে। বহুত আচ্ছা। পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ প্রেম বুঝানো না যায়, প্রতিজ্ঞা শ্রী কৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়। গদাধর পণ্ডিত তথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্য কি প্রেম ঘনিষ্ঠতা কোই নেই সমঝ সকতা। অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রতি গদাধর পণ্ডিত কাজ প্রেম থা ও কই সমঝ নেই সক। এসে কবি কবি লগতা কি দোনো কে বীচ মে কাফি লড়াই ঝগড়া হো রহা হ্যায়, বল্কি আসল মে ইয়ে ইস সিলসিলে মে হাম এক বিচার ভি কর সকতে হ্যায়। গদাধর চৈতন্য মহাপ্রভু কোন হ্যায়? শ্রী কৃষ্ণ। গদাধর পণ্ডিত কোন হ্যায়? শ্রীমতী রাধা রানী। তো রাধা রানী অর কৃষ্ণ কে বীচ ক্যা সম্পর্ক কেসা হ্যায়? বহুত গহরা প্রেম কা সম্পর্ক। বল্কি কবি কবি রাধা রানী অর কৃষ্ণ কে বীচ সংঘর্ষ ভি হোতা হ্যায়, জিসে বাংলা মে প্রেম প্রেম কোন্দল কাহা জাতা হ্যায়। কোন্দল কা মতলব হ্যায় ঝগড়া। প্যার কে নাতে জো লড়াই হোতা হ্যায়, ঝগড়া হোতা হ্যায়, ও ভি প্যার কা এক এক অঙ্গ হ্যায়। কাহা জাতা হ্যায় কি প্রেম কা গতি জো হ্যায় ও সরল নেই। হ্যাঁ, কেসা হ্যায় প্রেম কা গতি, উসকি বারে মে বতায়া গিয়া প্রেম কা গতি হ্যায় অহে রেব গতিম প্রেম না। প্রেম কা গতি হ্যায় অহি, অহি কা মতলব হ্যায় সাঁপ। অহি রেব গতি, সাঁপ কে জেসে চলন হ্যায় প্রেম কা চলন ভি ওয়েসাই। জেসে সাঁপ কেসে চলতে হ্যায় এসে সাঁপ কবি সিধা নেই যাত। প্যার ভি ওয়েসে, হ্যাঁ, কবি সংঘর্ষ অর কবি মিলন। গদাধর পণ্ডিত কে চৈতন্য মহাপ্রভু কে প্রতি প্রেম কোই সমঝ নেই সকতা। গদাধর পণ্ডিত নে আপনি প্রতিজ্ঞা তথা গোপীনাথ কি সেবা কা উসি তরহ পরিত্যাগ কর দিয়া জিস তরহ কোই তিনকে কো তিনকে কে টুকড়ে কো ত্যাগ দেতে। তিনকে কে টুকড়ে কে কোই প্রতি কোই ইয়ে করতা হ্যায়, কুছ পড়ওয়া করতা হ্যায় তিনকে কা প্রতি। তো বৈসে চৈতন্য মহাপ্রভু কে নাতে, চৈতন্য মহাপ্রভু কে সাথ রহনে কে কারণ রহনে কে লিয়ে উনহোনে গোপীনাথ কা সেবা আপনা জো প্রতিজ্ঞা থা ক্ষেত্র সন্ন্যাস সব ওই তিনকে কে নাতে ছোড় দিয়া, ত্যাগ দিয়া। এসে আম আদমি ক্যা সোচেঙ্গে ইয়ে কেসা হাম কর সকতে হ্যায়? তব তো অপরাধ হোগা, পাপ হোগা ইয়ে কারণ। বল্কি ভক্ত জো ভগবান কে প্রতি ভক্ত কা প্রেম জব ইতনা গহরা হো জাতা হ্যায় তো ও পাপ পুণ্য কা বিচারও নেহি করতে, কেবল প্রেম কে নাতে হি উনহোনে ভগবান কে প্রতি সারে কার্য করতে, ভগবান কে লিয়ে। इस प्रकार के प्रेम की केवल विश्वस्त भक्त गण ही समझ सकते हैं, सामान्यतया इसका तात्पर्य कोई नहीं समझ सकता। ताहार चरित्रे प्रभु अंतरे संतोष, ताहार हाते धोरी कहे कोड़ी प्रणय रोष। गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु बुलाया। जब गदाधर पंडित भी महाप्रभु के साथ जाने के लिए उद्दत हुए तो महाप्रभु उनको क्या बोला, ये मत करना, तुम क्षेत्र संन्यास के व्रत लिए हो तो इस व्रत को भंग नहीं करना, क्योंकि कहा जाता है कि कोई व्रत करने का प्रतिज्ञा करने के पश्चात अगर वो व्रत तोड़ देते हैं तो वो नरक जाते, पाप होता है, पाप के कारण नरक जाते हैं। तो गदाधर पंडित ने क्या बोला कि मेरा व्रत को रसातल में जाने दो, सबको रसातल में जाने दो, मैं, क्योंकि पाप का परवाह उनका नहीं था, नरक भोग करने का परवाह उनको नहीं था। इस सिलसिले में एक विचार भी हम कर सकते हैं, आपको शायद, आप सब शायद सब जानते हैं, फिर भी आपको याद है जब नारद मुनि श्रेष्ठ भक्त कौन है ढूंढने गया, कृष्ण ने बताया, नारद मुनि ने पूछा कृष्ण को, कृष्ण तुम्हारा श्रेष्ठ भक्त कौन है बताओ। तो कृष्ण बोला ठीक है मैं बताऊंगा, पर मेरा बहुत सर दर्द हुआ है तो थोड़ा ये सर दर्द का इलाज होने के बाद मैं बताऊंगा, अब नहीं कर सकता। तो नारद मुनि ने पूछा तो ये सर दर्द के इलाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो नारद भगवान तब नारद मुनि को बोला कि ये सर दर्द के दवाई या इलाज होगा अगर मेरा भक्त का चरण रेणु, पैर का धूल अगर मिल जाए और उसको अगर मैं मत्था पर रख सकते हैं तो मेरा सर दर्द का इलाज होगा। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, तो मैं जाके भक्त का चरण रज लाऊंगा। तो नारद मुनि भक्तगणों के पास गए, बहुत सारे बड़े बड़े जो भक्त हैं, उद्धव के पास गए और सारे जो ब्रह्मा जी के पास गए, लक्ष्मी जी के पास गए, बोला भगवान कृष्ण का सर दर्द हुआ है तो उसके लिए, उसके इलाज के लिए भक्त का पैर का धूल का ज़रूरत है। तो भक्त, सब भक्त क्या बोला, मैं देने वाला नहीं हूँ, मेरा चरण रज अगर भगवान अपना मत्थे पे रखेंगे तो मैं तो नरक जाऊँगा, ये हम नहीं करने वाला। तो हर जगह भ्रमण करने के पश्चात नारद मुनि ने अंत में गोपियां के पास गए। नारद मुनि वापस आए नहीं, ठीक है, गोपियां के पास गए। तो गोपियां के जब पूछा, बोला कि कृष्ण का सर दर्द हुआ है, तो गोपियां ने बोला कृष्ण किसका, कैसे इसका इलाज होगा। तो बोला कि एकमात्र इलाज केवल भक्त का चरण रज से ही हो सकता है। तो गोपिया बोला हम तो, बल्कि उन्होंने पूछा कि तो क्या आपको मिला है, तो बोला कोई भी नहीं देने के लिए तैयार है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। गोपिया ने बोला मुझे तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है कि हम भक्त हैं या नहीं, अगर मेरा हमारा चरण रज से कोई काम अगर होता तो ले जाओ। तो नारद मुनि ने पूछा तुमको पता है, तुम्हारा चरण, अगर चरण का धूल अगर भगवान का सर पे लगेगा तो क्या होगा, क्या होगा, तुम नरक जाओगे, अंतकाल नरक में रहना होगा। इसलिए तो गोपियां कोई फिक्र मत करो, ले जाओ, हम अनंत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं, अगर भगवान का सर दर्द का इलाज हो जाए तो हम जिंदगी भर अंत काल के लिए हम नरक में रहने के लिए तैयार हैं। ये है भक्त का मनोभाव। भक्त क्या चाहते हैं, भक्त भगवान का ही सेवा, भगवान का ही संतोष और भगवान का ही साथ रहना, भगवान के ही साथ रहना चाहिए। तो गदाधर पंडित का ये दृष्टांत, उन्होंने सोचा कि मैं महाप्रभु के साथ रहूंगा और चाहे मेरा क्षेत्र सन्यास और बाकी गोपीनाथ का सेवा सब उसके पड़वा मैं नहीं करता, उनके साथ रहना ही है। तब जब मैं महाप्रभु ने उनको समझाने का कोशिश किया और दोनों के बीच थोड़ा सा द्वंद हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसके पश्चात गदाधर पंडित ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं बंगाल। क्यों जा रहा हूं? सची माता को देखने के लिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु को, माँ को देखने के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने जाएंगे और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा सची माता को देखने। तुम क्या सोचते हो, तुम कि कौन, तुम सोचते हो तुमको बिना मैं नहीं रह सकता हूँ? मैं रह सकता हूँ, मैं अकेला रहूँगा, मैं अकेला जाऊँगा। प्यार के नाते ऐसा होता ना कभी कभी। तो ये है फिर गहरा, बहुत गहरा प्रेम का प्रकाश। तो गदाधर पंडित कैसे चलने लगे, महाप्रभु एक रास्ता से जा रहे थे, उन्होंने और एक रास्ता से जा रहे, बल्कि दोनों ने आ पहुंचा कटक पूरी। तो वहां कटक में महाप्रभु को तो गदाधर पंडित को बुलाया, बुला के उनको महाप्रभु ने बोलने लगे, ताहार चरित्र प्रभु अंतरे संतोष, ताहार हाते धरी कहे कोरी प्रणय रोष। गदाधर पंडित का आचरण महाप्रभु के हृदय को अत्यंत तो मोहक लगा, फिर भी महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, प्रतिज्ञा सेवा छाड़िवे ए तोमार उद्देश्य, शेषित होइल छाड़ी आइला दुर्देश। तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी है और पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है, क्योंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो अतएव सब पूर्ण हो गया। अमर संगे रोहिते चाहो बांछनिजसु, तुम्हार दुई धर्म जाए अमार हय दुख। मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे द्वारा इंद्रिय तृप्ति की अभिलाष मात्र है। तुम जो मेरे साथ जाने चाहते हो ये तुम्हारा अपना सुख के लिए बारे में तुम सोच रहे हो, बल्कि इस तरह तुम दो धार्मिक सिद्धांत को तोड़ रहे हो जिसके कारण मैं दुखी हूं, मैं अत्यंत दुखी हूं। तुम अपने सुख के बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे दुख के बारे में नहीं सोच रहे। तुम जो अपना प्रतिज्ञा छोड़ रहे हो, सेवा छोड़ रहे हो, इस कारण मेरा दुख हो रहा है। तो ऐसे महाप्रभु ने उनको समझाया, मोर सुख चाहो जदि नीलाचले चलो, अमार शपथ जदि आर किछु बोलो। यदि तुम्हें मेरे सुख की चाह तो सुख की चाह तो तुम नीलाचल लौट जाओ। यदि तुम विषय में तुम यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे तो तुम मेरी निंदा होकर निंदा ही करोगे। एतो बोली महाप्रभु नौकाते चढ़िला, मूर्छित होइया पंडित तथा ही पड़िला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। महाप्रभु ऐसे लगा कि महाप्रभु क्रोधित हो गए थे, महाप्रभु उनके प्रति और उनके प्रति रुष्ट हो गए थे, रूठे हुए थे, बल्कि असल में ये भी उनका प्रेम का ही प्रकाश था। महाप्रभु क्या बोला, बोला तुम अपने सुख के बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे दुख के बारे में, मेरा जो कष्ट हो रहा है उसके बारे में सोच नहीं रहे, ये तुम्हारा कैसे मन भाव है। तुम अगर मेरा सुख चाहते हो तो मेरा ये जो दुख है उसको निवारण करने का प्रयास करो, तुम जाओ वापस चले जाओ और गोपीनाथ का सेवा करो और जगन्नाथ पुरी में रहो। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु नाव पर चढ़ गए, वहां से नदी में जाने का था, पैदल उन्होंने कटक तक आए थे और कटक से उन्होंने नाव पर जाने का प्रबंध किया, तो ना ये कहकर महाप्रभु नाव पर चल गए। और तब गदाधर पंडित का इतना कष्ट हुआ, वहां उन्होंने मूर्छित होकर गिर पड़े हुए, मूर्छा ये क्या बोलते हैं, फेंट, मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पंडित लइया जाइते सार्वभौम आज्ञा दिला, भट्टाचार्य कहे उठो इच्छे प्रभुर ओइछे प्रभुर लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को ले जाए, लेते जाए। अतवे भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो महाप्रभु को लीलाएं ऐसी ही हैं। तुमी जानो कृष्ण निज प्रतिज्ञा छाड़िला, भक्त कृपा बशे भीष्मेर प्रतिज्ञा राखिला। तुम जान लो कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। शनियम स्व निगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत धीकर तुतो रथस्थ धृत रथ चरणभ्या चल दुर्गरिव हंतुमीभम गति तरिया गतोत्तरिया। ये श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंध का एक श्लोक है, ना अष्टम स्कंध का श्लोक है। मेरे प्रतिज्ञा के सत्य बनाने के लिए कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अस्त्र ग्रहण न काटने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका उत्तरीय नीचे, अच्छा ये प्रथम स्कंध का है, उनका उत्तरीय नीचे गिर रहा था, तभी मैं अपने रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। वे मुझ पर उसी तरह झपटे से जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है, उन्होंने सारे पृथ्वी को हिला दिया। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने ना तो किसी का पक्ष लेकर लड़ाई करेंगे, ना तो अस्त्र धारण करेंगे, अस्त्र को स्पर्श करेंगे, ये प्रतिज्ञा था कृष्ण का। बल्कि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कृष्ण का यह प्रतिज्ञा तोड़ू, कि कृष्ण बोला वो लड़ाई नहीं करेंगे, मैं उससे लड़ाई करवाऊंगा। ये वीर रस का ये था, ये है, जब वीर रस में रहते हैं भक्त लोग तो लड़ाई का इच्छा होता है भगवान के साथ। तो भीष्म ने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं कृष्ण को लड़ाई करवाऊंगा। तो एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ऐसा लड़ाई कर रहा था कि अर्जुन परेशान हो गया, बिल्कुल परेशान हो गया। तो ये स्थिति देखकर भगवान इतना क्रोधित हो गए अर्जुन के ये स्थिति देखकर कि उन्होंने अपना रथ से उतर गए और उतार कर जमीन से एक टूटा हुआ रथ का जो चक्का है उसको उठा लिया। भगवान जब चक्का हाथ में लेते हैं तो क्या बनता है, सुदर्शन चक्र बनता है। तो ये चक्र लेकर भगवान भीष्म को मारने के लिए गया। तो उस समय अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कृष्ण को पैर पकड़ लिया, रोको कृष्ण ये क्या कर रहे हो, तुम अपना प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। तो ऐसे अर्जुन ने कृष्ण को रोका, बल्कि बात यह है कि भक्तों का प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। क्योंकि कृष्ण भीष्म भक्त हैं और भक्त ने प्रतिज्ञा किया कि भगवान को मैं लड़ाई करवा के छोड़ूंगा, तो बोला ठीक है चलो मैं अपना प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কইল যত্ন করিয়া। ইসি তরহ তুমারা বিয়োগ সহতে হুয়ে মহাপ্রভু নে বড়ে যত্ন সে তুমারে ব্রত কি রক্ষা কি। যদ্যপি তুমার তুম না জানে কে কারণ তুমসে বিছোড়নে কে কারণ উনকা কষ্ট হো রা, বল্কি মহাপ্রভু নে ও কষ্ট সহন কর রহে হ্যাঁ তুমারা প্রতিকার রক্ষা করেন, ক্যোঁকি ও নহীঁ চাহতে হ্যাঁ কি তুমারা আপনা কষ্ট সহতে হুয়ে ভি ও তুমারা প্রতিকার রক্ষা করেন। এই মত করি তারে প্রবোধ করিলা দুইজনে শোকাকুল নীলা চলে আইলা। ইস তরহ সে সার্বভৌম পণ্ডিত নে গদাধর পণ্ডিত মে প্রাণ সঞ্চার কিয়া। ফির দোনো অত্যন্ত শোকাকুল হোকর জগন্নাথপুরি অর্থাৎ নীলাচল বাপস চলে আয়ে। প্রভু লাগি ধর্ম কর্ম ছাড়ে ভক্তগণ, ভক্ত ধর্ম হানি প্রভুর না হয় শরণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমিত্তে সারে ভক্ত আপনি সবই তরহ কে কার্য ছোড় সকতে হ্যাঁ, ফির ভি মহাপ্রভু নহীঁ চাহতে থে কি ভক্তগণ আপনি বচনবদ্ধ কর্তব্য কো ছোড়ে। প্রেমের বিবর্ত ইহা শুনে যেই জন অচিরে মিলায় তারে চৈতন্য চরণ। ইয়ে সব প্রেমকে বিবর্ত হ্যাঁ, যো কই ভি ইন ঘটনা কো সুনতা হ্যাঁ উসে শীঘ্র হি মহাপ্রভু কি শরণ প্রাপ্ত হো জাতি হ্যাঁ। ইয়ে প্রেম প্রেম বিবর্ত, বিবর্ত কা মতলব বিবর্ত কা মতলব বিরোধী স্থিতি, এসে লাগতা কি প্রেম এসা হোনা চাই, বল্কি ইয়ে জো হ্যাঁ ইয়ে প্রেম কা বিরোধী রূপ হ্যাঁ, বিরোধী আচরণ হ্যাঁ। প্রেম কে এসে প্রেম মে লড়াই কিসকে বীচ হতা হ্যাঁ, শত্রু কে বীচ লড়াই হতা হ্যাঁ, দ্বেষ কি কারণ লড়াই হতা হ্যাঁ, বল্কি কভি কভি প্রেম কি কারণ লড়াই হতা হ্যাঁ। তো ইয়ে জো লড়াই হ্যাঁ উসকো প্রেম কা বিবর্ত কাহা জাতা হ্যাঁ, প্রেম বিবর্ত প্রেম কি কারণ লড়াই হো রা। তো ইহা কাহা গয়া হ্যাঁ কি জো ইসকো সুনতে হ্যাঁ অর জো ইসকো সমঝতে হ্যাঁ ও উনকো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি চরণ কমল কো সাহারা মিলতা হ্যাঁ, মহাপ্রভু কি চরণ কমল মিলতা হ্যাঁ। অর্থাৎ ভক্ত কেসে ভক্ত কা মহাপ্রভু কে প্রতি জো প্রেম উস প্রেম কা ইস পরিণতি জো সমঝতে হ্যাঁ, অর্থাৎ জো সমঝতে হ্যাঁ কি ইয়ে প্রেম কা সবসে গহরা অবস্থা হ্যাঁ, গহরা স্থিতি ইয়ে স্থিতি কো জর মতলব ইস প্রেম কা প্রেম কিতনা গহরা হ্যাঁ ইয়ে জো সমঝ লেতে হ্যাঁ ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি চরণ কমলো কা শরণ প্রাপ্ত হতে। দুই রাজপাত্র যেই প্রভুর সঙ্গে যায় যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায়। যাব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তথা উনকি টোলি যাজপুর পৌঁছি তো মহাপ্রভু নে উন দোনো সরকারি অধিকারীও কো লেট জানে কে লিয়ে কাহা জো উসকে সাথ আয়ে থে। তো এসে মহাপ্রভু নে যাজপুর পৌঁছনে কে বাদ দো রাজ কর্মচারী জো মহাপ্রভুকে সাথ আ রহে থে, কোন আ রহা থা কোন কোন, ভেরি গুড, মদ্ররাজ অর হরিচন্দন কো কিসনে ভেজা থা, রাজা প্রতাপ রুদ্র নে ভেজা থা কি মহাপ্রভুকে সারে আয়োজন করেন ভ্রমণ কে সারে বন্দোবস্ত করেন কে লিয়ে জো কুছ জরুরত হো বলা তুম সব দেখনা। বহুত বড়ে রাজ কর্মচারী থে, जाजपुर तक आए तो महाप्रभु ने बोला अब तुम वापस चले जाओ, जरूरत नहीं। प्रभु विदाय दिलो राय जाय तार शने, कृष्ण कथा रामानंद शनि रात्रि दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया, किंतु रामानंद राय उनके साथ बने रहे। महाप्रभु रामानंद राय से दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें करते। रामानंद राय के साथ महाप्रभु कृष्ण के विषय में बातें करते थे। तो राज कर्मचारी थे उनको भेज दिया गया, बल्कि रामानंद राय महाप्रभु के साथ चलने लगे। प्रतिग्रामे राज आज्ञाए राजभृत्यगण, नव्य गृह नाना द्रव्ये करये सेवन। याद है महाप्रभु क्या आयोजन किए थे, राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु के लिए क्या आयोजन किए थे। गांव गांव में नया मकान बनाया गया था और 5-7 घर में महाप्रभु के लिए भोजन तैयार हो रहा था। क्योंकि पता नहीं था कौन कौन से गांव में रुकेंगे, तो जहां भी रुके ताकि वहां रहने के लिए, महाप्रभु का ठहरने के लिए सही जगह रहे और उनका सारे प्रसाद आदि भोजन के लिए सारे सब कुछ तैयार रहे। यही मत चली प्रभु रेमुना आईला, तथा हुईते रामानंद राय विदाय दिला। अंत में महाप्रभु रेमुना पहुंचे, जहां से उन्होंने श्री रामानंद राय को भी विदा किया। भूमेते पड़िला राय नाही को चेतन, राय कोले करी प्रभु करय क्रंदन। जब रामानंद राय बेहोश होकर भूमि पर गिर गए तो महाप्रभु उन्हें अपने गोद में लेकर विलाप करने लगे। रायर विदाय भाव ना जाए सहन, कहिते ना पारिए ताहार वर्णन। महाप्रभु ने रामानंद राय के वियोग का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। महाप्रभु से रामानंद राय के वियोग का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है, ये असह्य प्राय है, अतएव मैं इसके आगे वर्णन नहीं कर सकता। तबे वज्रदेशीमा प्रभु चली आईला, तथा राज अधिकारी प्रभुर मिलिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ओडिशा राज की सीमा पर आ पहुंचे तो एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आए। दिन दुई चारिते हो करिल श्रेवन, आगे चली बारे से कहे विवरण। वो सरकारी अधिकारी 2-4 दिन तक उनके सेवा करता रहा। उसने महाप्रभु को आगे की विस्तृत सूचना भी दी। मद्दप जवन राजार आगे अधिकार, तार भये पथे के हो नारे चलिवार। उसने महाप्रभु को बतलाया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते। पिछलदा पर्यंत सब तार अधिकार, तार भये नदी कहे नदी के हो होइते नारे पार। मुस्लिम सरकार की सीमा पिछलदा तक है, मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार नहीं कर सकता। दिन कत रहु सन्धि करी तार शने, तबे सुखे नौकाते कराइब गमने। महाराज प्रताप रुद्र के सरकारी अधिकारी ने महाप्रभु को ये भी बतलाया कि उन्हें कुछ दिन तक ओडिशा की सीमा में रुकना चाहिए, जिससे मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्ण समझौता किया जा सके। इस तरह महाप्रभु नाव से नदी के शांतिपूर्वक पार कर सकेंगे। राजा के प्रताप रुद्र के जो कर्मचारी सीमा में थे तो उन्होंने उनको बताया कि आप कुछ दिन तक यहाँ रह जाइए और इस समय के बीच हम राजा के साथ, मुसलमान राजा के साथ कुछ समझौता कर आपके जाने के लिए आयोजन करेंगे, ताकि आपको जाने में कोई मुसीबत ना हो, कोई भय ना रहे। সেই কালে সে যবনের এক অনুচর পড়িয়া কটকে আইল করি বেশান্তর। উসি সময় মুসলিম গভর্নর কা এক অনুযায়ী বেশ বদল কর ওড়িশাকে খেমে মে ওড়িশাকে শিবির মে আয়ে। প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া হিন্দু চর কহে সেই যবন পাস গিয়া। এক সন্ন্যাস এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হইতে, অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে। উস হিন্দু জাসুস নে মহাপ্রভুকে অদ্ভুত গুণ দেখে আর মুসলিম গভর্নর কে পাশ লোট কর বতলায়া, এক সন্ন্যাসী অনেক সিদ্ধ পুরুষো কে সাথ জগন্নাথপুরি সে আয়া হে। নিরন্তর করে সেই কৃষ্ণ সংকীর্তন, সবে হাসে নাচে গায়ে করে ক্রন্দন। ইয়ে সারে সন্ত মহাত্মা নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কা কীর্তন করতে হ্যাঁ আর সভি হাসতে নাচতে গাতে তথা চিখতে হ্যাঁ। লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে, তারে রেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে। উনহে দেখনে কে লিয়ে লাখো কি সংখ্যা মে লোক আতে হ্যাঁ আর এক বার দেখ লেনে সে দেখ লেনে কে বাদ ওয়ে আপনে ঘর বাপস জানে কা নাম নহি লেতে। সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়, কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়। সারে লোক পাগল জায়সে হো যাতে হ্যাঁ, ওয়ে কেবল নাচতে তথা কৃষ্ণ নাম কা কীর্তন করতে হ্যাঁ। কভি কভি ওয়ে রোতে ভি হ্যাঁ আর ভূমি পর লুটকতে হ্যাঁ। কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানে, তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানে। বস্তুত ইন বাতো কা বর্ণন ভি নহি কিয়া যা সকতা হ্যাঁ, কেবল দেখ কর হি উন্হে সমঝ যা সকতা হ্যাঁ। উসকি প্রভাব কে কারণ মে উসে ভগবান মানতা হুঁ। এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়, হাসে কান্দে নাচে গায়ে বাউলের প্রায়। ইয়ে কহকর ওয়ে সমাচার বাহক দূত হরি তথা কৃষ্ণকে নাম কা কীর্তন করনে লগে। ও হাসনে রোনে নাচতে নাচনে তথা উন্মত্ত হি উন্মত্ত কি তরহ গানে ভি লগতা লগা। এত শুনে যবনের মন ফিরি গেল, আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল। ইয়ে শুনকর মুসলিম গভর্নর কা মন ফির গয়া। তব উনহোনে আপনে নিজি সচিব কো ওড়িশা শাসনকে প্রতিনিধি কে পাশ ভেজা। বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিউভল হইল। ও মুসলিম সচিব মহাপ্রভুকে পাশ আয়া, জব উসনে মহাপ্রভুকে চরণ কমলো পর আপনা সাদর নমস্কার নিবেদন কিয়া আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কা উচ্চারণ কিয়া, তো ও ভি প্রেম মে বিভল হো গে। ধৈর্য হইয়া উড়িয়াকে কহে নমস্করি, তোমার স্থানে পাঠাইলাম লেচ্ছয় অধিকারী। শান্ত হোনে পর মুসলিম সচিব নে অভিবাদন করনে কে বাদ ওড়িশা সরকার কে প্রতিনিধি কো সূচিত কিয়া, মুসলিম গভর্নর নে মুঝে ইহা ভেজা হ্যাঁ। তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এথাকে আসিয়া, যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া। যদি আপ সহমত হো তো মুসলিম গভর্নর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সে এহি পর মিলনে আয়ে আর ফির লোট যায়ে। আজ মে ইহা তাকে পাঠ রাখতা হুঁ। হরে কৃষ্ণ গৌর প্রেমানন্দে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কি। এক দো প্রশ্ন মে লে সকতা হুঁ। এক
স্মৃতি পুরাণ লগতা হ্যাঁ কি কুছ কাম করনে সে শায়দ কুছ সেবা আচ্ছা সে হো সকতা হ্যাঁ, लेकिन वो आज्ञा से अलग है, तो लेकिन ये श्लोक उनको रोक देता है कि अगर हम इसके अतिरिक्त करेंगे तो उत्पात आए बदल, तो हम ये श्लोक कैसा रिलेट हो सकता है, क्योंकि वैद्य भक्ति मतलब सिर्फ आज्ञा की पालन करना, लेकिन अगर उसके इवन अगर प्रेम से भी अगर कोई इवन सिंसियर डिवोशनल सर्विस के वजह से भी अगर उसको उस आज्ञा को अतिक्रमण करते हैं तो सिर्फ उत्पात उत्पात होता है, इसको कैसे समझें?
देखो, महाप्रभु तो धर्म संस्थापन करने के लिए आए, इसलिए शास्त्र का जो ये है निर्देश है उसको पालन करने का, वैधि भक्ति पालन करने का निर्देश उन्होंने दे रहे हैं। और ये महाप्रभु कर रहे हैं, बल्कि भक्त का और एक विचार है कि प्रचार करने के लिए, भगवान का वाणी का प्रचार करने के लिए अगर हमको कुछ करे करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भक्ति के लिए, भगवान के सेवा के लिए अगर जरूरत होता है तो कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जगर जैसे ये महाप्रभु का साथ, महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित का जो ये लीला है, गदाधर पंडित जा रहा था क्यों? अपने कारण। अगर उन्होंने प्रचार के कारण जाते थे तो महाप्रभु बोलते थे ठीक है चलो जाओ। तो बात यह है कि जब प्रचार के लिए कुछ करना होता है तो हम करने के भक्त तैयार रहते हैं, बल्कि अपने सुख के लिए नहीं, अपने कारण नहीं। विधि भक्ति पालन जरूरी है, क्योंकि जैसे तुम बताया ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पात विकल्प, यद्यपि ये ऐकांतिक की भक्ति है हरि भक्ति, बल्कि ये एक उत्पात बना रहे। तो शास्त्र का विधि नहीं तोड़ना है, और शास्त्र विधि के अनुसार महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ में युक्त होना, क्योंकि शास्त्र विधि भी ये है। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु का सेवा कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। संकीर्तन का मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण नाम कीर्तन, बहुभीर मिलित्वा, बहुत सारे आदमी मिलकर भगवान का नाम का कीर्तन। तो भक्त इस युग में भक्तों को क्या करना चाहिए? इस युग धर्म पालन करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो ये नाम संकीर्तन ही उद्देश्य है इस युग में। और ये नाम संकीर्तन के लिए और अगर दूसरा को छोड़ना होगा तो भक्त तैयार रहते। शास्त्र विधि है अपना पिता माता को देखना बुढ़ापा, जब पिता माता बूढ़ा हो जाते हैं तो लड़का का काम है उनको देखभाल करना, ये भी एक शास्त्र विधि है। बल्कि भगवान की वाणी के प्रचार के लिए जब ये शास्त्र विधि का लंघन होता है तो उससे कोई अपराध नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान का सेवा जो है, भगवान का वाणी का प्रचार जो है, ये युग धर्म है। तो युग धर्म ही करना है, पालन करना। तो प्रचार के लिए, संकीर्तन के लिए, भगवान की वाणी के प्रचार के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार।
एक और कि जैसा कि मैंने कदाचित पंडित ने ऑलरेडी उनका व्रत तोड़ के और चेतने हम लोगों ने उनको वापस जाने के लिए बोला कि जैसे भी व्रत, तो ऐसे नहीं सोचा कि व्रत तो कैसे भी चला गया, अभी फिर वापस जाने से भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वक्त तो चल रहे हैं। लेकिन फिर वैसा ही अगर कोई चीज़ अगर तोड़ जाता है, जैसे कि एकादशी बाई चांस बाई मिस्टेक अगर कभी भी भूल कर कुछ क्रीम खा लिए, तो इसका मतलब यह है कि ठीक है आज एकादशी कैसे भी ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर कंटिन्यू, ऐसा तो नहीं सोचते, तो इसका
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ कोई भूल होने के कारण एकादशी व्रत नहीं रख सका और बाद में पता चला कि आज एकादशी है, इसका मतलब ऐसा नहीं, ठीक है जब नहीं पालन कर रहे थे चलो एक सब कुछ खा ले आज, नहीं मनोभाव ऐसा रहेगा कि गलत हो गए फिर भी कल हम रखेंगे एकादशी, क्योंकि आज भी कुछ रेस्ट्रिक्टेड वेज में रहे। ओके हरे कृष्ण, आई हैव सम अदर थिंग्स टू डू। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंद।